नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसादि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशताय नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय चरम श्लोक 46 आयु श्रियं जसो धर्मं लोकान् आशिषेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः आयु श्रियं जसो धर्मं लोकान् आशिषेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः आयु श्रियं जसो धर्मं लोकान् आशिषेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः रजस्तमः प्रकृतयः तमसा मूढचेतसः सतां विद्वेष मा चेरु आराध आगत मृत्यु कंस ने अनुमति दे दिया असुरों को कि तुम लोग गौ ब्राह्मण को सताओ सज्जनों से द्वेष करो द्रोह करो तो स्वभाव से ही असुर थे दूसरे लोगों को मारना सताना उनके स्वभाव में था और ऊपर से राजा कंस का आदेश हो गया ठीक है आज्ञा दे दिया अनुमति दे दिया भक्तों से द्वेष करने के लिए तो वे सतान विद्वेष मा चेरु सतान ब्राह्मणों से और भक्तों से विद्वेष बढ़ा लिए द्रोह करने लगे असली बात यह थी कि उनकी मृत्यु आ गई थी आसन्न मृत्यु थी तो अब इस चरम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आयु का नाश होना ये तो साधारण बात है। जो व्यक्ति महद अतिक्रम करता है, ब्राह्मणों और वैष्णवों के विरुद्ध चलता है, उनकी मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो उसकी आयु ही केवल नष्ट नहीं होती है, आयु के साथ साथ और सारा श्रेय समाप्त हो जाता है। कह रहे कि आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाशिषय वचन, आयु तो समाप्त होती ही है, आयु के साथ जस उसकी जो कीर्ति है, कीर्ति समाप्त हो जाती है। धर्मम और धर्म का जो पालन किया है, धर्म का पालन करके स्वर्गादि कमाया है, तो लोक भी नष्ट हो जाता है, धर्म तो नष्ट होता ही है। और आशीष है बच्चा, और भी आशीर्वाद जो प्राप्त किया है इस लोक में और परलोक में, सब जगह का मंगल उसका समाप्त हो जाता है। किसका पुंसा, किसी भी पुरुष का, किसी व्यक्ति का जो महद अतिक्रम करता है, अतिक्रम का अर्थ है मर्यादा का उल्लंघन। साधु पुरुषों के मर्यादा का तोड़ता है, उनके जीवन में बाधक बनता है, ये सुखदेव गोस्वामी का साप वचन है। भक्तों को भय नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों से। भले ही दुष्ट बहुत अत्याचार करें, विद्वेष करें भक्तों से, लेकिन भक्तों का बाल बंका भी नहीं हो सकता है। एक टीकाकार कहते हैं, जिनके गोकुल में साक्षात हरि हैं तो उनका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बाल बिकली भी नहीं कर सकते, टेढ़े नहीं कर सकते हैं। जैसे केश को टेढ़ा करना कितना आसान है, लेकिन भक्तों का ये बाल बांका नहीं कर सकते हैं। जिनके गोकुल में हरि है, गोकुल का यह अर्थ करते हैं जिनके इंद्रियों के समूह में, गोकुल इंद्रियों के समूह में भगवान है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम है, जिनके आँखों में भगवान है, दर्शन करते हैं, कानों में भगवान है, सुनते हैं, मन में स्मरण करते हैं, जैसे जिनके इंद्रियों में गोकुल में भगवान हरि हैं, उनका ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। होंगे रहेंगे द्वेषी, लेकिन भक्तों का कुछ नहीं कर सकते। सुखदेव गोस्वामी का यह आशीर्वाद है वैष्णवों के लिए और दुष्टों के लिए साप है। किसी भी वैष्णव को सताने से, किसी भी तरह का सताना है, अतिक्रम कहते हैं। अतिक्रम का अर्थ है उनके पथ के विरुद्ध जाना, उनके गति को रोकना। कोई भी पुरुष पुंसा यदि भगवान के भक्तों को सताता है या उनके केवल विरुद्ध जाता है तो उसकी आयु समाप्त हो जाती है। यद्यपि लिखा है, लिखा हुआ है कि आयु बहुत लंबी होगी, लेकिन तुरंत माइनस हो जाती है, ये इतिहास बताता है। एक बहुत बड़ा दैत्य हुआ है हिरण्यकश्यपु, उसने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसको वर दे दिया, निश्चित कर दिया कि ठीक है, तुम मनुष्यों से नहीं मर सकते हो, पशुओं से नहीं मर सकते हो, किसी अस्त्र से नहीं मरोगे, दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे। ब्रह्मा जी अमोघ वाक्य वाले हैं, उनका आशीर्वाद, उनका वचन कभी मिथ्या होता नहीं। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज के विरुद्ध चलने के कारण, प्रहलाद से द्वेष करने के कारण हिरण्यकश्यपु का सब कुछ नष्ट हो गया है। पहले वो कई मन्वंतरों तक शासन किया था इस जगत में, लेकिन प्रहलाद महाराज से द्वेष करने के कारण बहुत कम दिन में ही वो मर गया है। भगवान ने मार दिया है नृसिंह अवतार लेकर, कि उसकी आयु तो नष्ट हुई ही, उसकी कीर्ति, उसका धर्म, धर्म का अर्थ है धर्म के द्वारा साधित जो उपलब्धि होने वाली थी। बहुत बड़ी तपस्या किया, बहुत बड़ा अपने समय से दान किया, यज्ञ किया, इसका फल बना था, उसे स्वर्ग लोक में तो जाना ही था, स्वर्ग का सुख भोगना था, ऐसे वो इंद्र भगवान से स्वर्ग छीन लिया था। जब उसने यह पता लगाया कि इंद्र इस जगत का सबसे बड़ा शासक है, स्वर्ग का अधिपति, तब वह यह जान करके कि यह विष्णु का एलाई है, उसका पक्षधर है, उसके पक्ष में रहता है इंद्र, तब तुरंत चढ़ाई किया और इंद्र को बंदी बना लिया। और उसके बाद उसने मंदर पर्वत में जा करके बहुत बड़ा तप किया। तप ऐसा कठिन किया कि ब्रह्मा जी बाध्य होकर के उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं किया, बाध्य कर दिया प्रकट होने के लिए। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं चाहता हूँ मैं किसी के द्वारा ना मारूं। पहले उसने मांगा कि मैं मरूं ही नहीं, ऐसा वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो कठिन है, इस संसार में नियम है, जो भी जन्म लेगा वो मरेगा। तो ठीक है, आप ये वर दीजिए कि आपके द्वारा बनाई हुई किसी वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया और भी मांगा कि मेरी दिन में मृत्यु ना हो, रात में ना हो, आकाश में ना हो, जमीन पर ना हो, जल के अंदर मेरी मृत्यु ना हो। फिर उसे याद आया सुदर्शन चक्र बहुत भयानक है, तो उसने भी मांगा किसी अस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, जैसे मेरे भाई की मृत्यु हो गई। विष्णु ने पशु का अवतार लेकर के उसको मार दिया, तो इसलिए मांगा किसी पशु से मेरी मृत्यु ना हो, किसी मनुष्य से ना हो, ये वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी वर दे दिए। उनके वर को पा करके हिरण्यकश्यपु और उदंड हो गए, वो सारे देवताओं को सताना चालू किया, देवताओं को और वैष्णवों को सताना चालू किया। इतना सताया कि देवता लोग भगवान से त्राही त्राही करने लगे, हमारी रक्षा कीजिए हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से। तो भगवान ने ये कह दिया, ब्रह्मा जी वर दिए हैं, हम क्या करें। अब देवताओं ने कह दिया कि ब्रह्मा जी आपसे बढ़ करके हैं, क्या हम ऐसे ही मरते रहें, हिरण्यकश्यपु शांत नहीं होगा, उसका दमन आप कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, जब वह अपने पुत्र श्री प्रहलाद को मारना चाहेगा, उसी समय मैं उसे नष्ट कर दूंगा, भले ही बरोर जीतूं। ब्रह्मा जी वर दिए हैं फिर भी। हनी से भी बरोर जीतम, भगवान ने कहा हाँ मैं मार दूंगा, यद्यपि बरोर्जित है, वर से उसकी शक्ति बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज से वैर करेगा तो उसको मैं नष्ट कर दूंगा। तो यह इतिहास बताता है कि हिरण्यकश्यपु को सारी उपलब्धि प्राप्त थी, दीर्घायु प्राप्त, सब कुछ था लिखा हुआ उसके भाव में था, लेकिन लिखने वाले साक्षात ब्रह्मा जी थे, पर ब्रह्मा जी के लेख को भी भगवान ने निरस्त कर दिया। हिरण्यकश्यपु द्रोह किया प्रहलाद से, इस कारण से उसके सारे शुभ कर्म नष्ट हो गए। आयु तो नष्ट हुई ही, इसके साथ उसका जस, धर्म, धर्म करके जो स्वर्गादि लोक पर अधिकार प्राप्त किया था, उसे अक्षय बहुत काल पर स्वर्ग मिलने वाला था, परंतु कुछ नहीं मिला। हंति श्रेयांश सर्वाणि, उसके जीवन में जो भी मंगल था, मंगल काम किया था, उसका फल बना था और सारा फल नष्ट हो गया। तो यह सावधान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, भक्तों को दुष्टों से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्षा करने वाले भगवान है और भगवान हमेशा जागरूक है। उनको आना नहीं पड़ेगा, उनका नाम ही बहुत बड़ी शक्ति रखता है। यदि हमारी जीवा पर भगवान का नाम आता रहता है तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। सावधान, सावधानी इसकी बरतनी चाहिए कि किसी वैष्णव का, किसी ब्राह्मण का कभी हमारे द्वारा वचन से भी तिरस्कार न हो। चैतन्य चरितामृत में एक कथा है, रामचंद्र खान, वो एक ब्राह्मण थे और जमींदार थे, शांतिपुर के पास रहते थे। वहीं पर हरिदास ठाकुर भी रहते थे। हरिदास ठाकुर से वो आ करके बहस करने लगा, बोला तुम नीच जाति के, इतना सम्मान पा रहे हो, तुम ये कहते हो कि हरि नाम से सब कुछ मिल जाएगा, तुम इसको प्रमाणित करो। हरिदास शास्त्री तो शास्त्र पढ़े नहीं थे, परंतु रामचंद्र खान कह दिया यदि तुम अपने उक्ति के उक्ति को प्रमाणित करने के लिए शास्त्र वाक्य शास्त्र का प्रमाण नहीं दोगे तो तुम्हारी जीवा में काट दूंगा। जिस जीवा से भगवान का नाम जपते हो इसको मैं काट दूंगा। केवल इतना ही कहा रामचंद्र खान, और कुछ नहीं किया, लेकिन केवल वचन से हरिदास ठाकुर का तिरस्कार करने का उसे कुष्ठ हो गया है, और गलित कुष्ठ। उसकी जिह्वा दूसरे दिन ही गल गई, बोल नहीं सकता था, जिह्वा गिर गई हरिदास ठाकुर का तिरस्कार करने से, वचन से तिरस्कार। तो ये सब प्रमाण है, किसी भी वैष्णव का वचन से भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्या जरूरत है किसी की चर्चा करने की? चर्चा करने पर निंदा होने ही लगती है। अनेक प्रकार के संत हैं, साधु हैं, गुण दोष पाने चले तो संसार तो गुण दोष से भरा हुआ है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साधन, तो किसी के दोष को देखना नहीं, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की भी। वैष्णव की तो बहुत दूर की बात है, वैष्णव भगवान के प्रिय हैं। ऐसे भक्तों के विषय में कोई अपवाद नहीं सुनना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, स्मरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का सारा श्रेय समाप्त हो जाता है। सर्वाणि श्रेयांश सर्वाणि हन्ति, यह एक कर्म सारे सुकृत को नष्ट कर देगा। रावण के पास क्या नहीं था, आज भी लोग कहते हैं कि रावण बहुत पढ़ा लिखा था, वेद का विद्वान था, इस लोक में इस जीवन में वो बहुत बड़ी कमाई किया है, स्वयं भगवान शिव से 10 मस्तक के बदले कई मस्तक मांगा है, भगवान राम उसके मस्तक को काटते काटते परेशान हुए, लंका का मैदान पूरा मुंड से भर गया, मस्तक से भर गया, रावण की भुजाओं से सारा भर गया, लगता था कि वो मरेगा नहीं। लेकिन जानते हैं जिस दिन उसने विभीषण जी को लात मारा उसी दिन वो वैभवहीन हो गया, उसी समय निश्चित हो गया कि अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये सोने की लंका पुष्पक विमान उसका सारा प्राकर्म जश समाप्त हो जाएगा। रावण जब ही विभीषण त्यागा भय विभव बिनु, भय विभव बिनु तब ही अभागा, और सब पाप अत्याचार तो किया ही था, सबसे बड़ा पाप किया है कि वैष्णव विष्णु भक्त को लात से मारे, वो भी अच्छी बात कहने पर। विभीषण जी बड़े स्नेह से भाई समझ करके समझा रहे थे, वो भी सलाह पूछने पर रावण ने पूछा कि हमको क्या करना चाहिए, तो विभीषण जी कहे कि सीता को लौटा देना चाहिए, सुनो नाथ सीता बिनु दीन है, हितन तुम्हारे संभोज कीन है, हे नाथ आप सुनिए सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा आपका हित शिव जी नहीं कर सकते, ब्रह्मा नहीं कर सकते। जब ही विभीषण जी ये कहे कि सीता को लौटा दीजिए, भगवान के पास भेज दीजिए, दे दीजिए, तो वह लात मारा, इस शिक्षा को सुन करके क्रोध हुआ, उसने लात मारा, तब विभीषण जी विमान पर चढ़ करके समुद्र के पार आए, भगवान समुद्र के तट पर थे, बानरों ने घेर लिया विभीषण को चारों तरफ से, और जब ये सुना कि ये रावण का भाई आया है, तब बानरों के अधिपति सुग्रीव जी को ये लोग कहे सुग्रीव जी सेनापति थे भगवान राम के, तो उन्होंने भगवान राम से जा करके कहा कि हे प्रभु, आवा मिलन बसानन भाई, रावण का भाई आपसे मिलना चाहता है, हमको पता नहीं है वो क्या करेगा, राक्षस राक्षस होते हैं, अतः हमें यही उचित लग रहा है कि उसको अरेस्ट करके यहाँ रखना, बांध करके रखना चाहिए, यही मुझे अच्छा लगता है। और श्री हनुमान जी सुन रहे थे, तो श्री भगवान ने कह दिया है, पहले पता लगाओ उसकी नियत क्या है, किस कारण से आ रहा है। यदि डर करके भयभीत होकर के मेरी शरण में आया होगा तो उसको प्राण की तरह मैं रक्षा करूंगा। जौ सभीत आवास नाई, रखियो ताई प्राण की नाई। और यदि हमारा भेद लेने के लिए आया तो भगवान ने कह दिया, जगम सखा निशाचर जेत लक्ष्मण हन ही निविषमाते थे। हे मित्र, यदि भेद लेने के लिए आया, हमारे विरुद्ध आया है, तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, अकेले लक्ष्मण सबको क्षण भर में मार सकते हैं। भगवान ने भी कह दिया, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आ नहीं सकता है, यदि वो छली है, प्रपंची है। मेरे पास आने में उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला है, जिसमें कपट नहीं है, वह व्यक्ति मुझे पाता है। बस इसका पता लगाओ, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। जब भगवान ने कहा कि यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आया होगा, मैं प्राण की तरह उसे बचाऊंगा, जैसे कोई व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करता है, वैसे मैं बचाऊंगा, शरण में रखूंगा। यह सुनते ही श्री हनुमान जी जय जयकार किए, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि यह भक्त है, लंका में रहता है लेकिन बहुत बड़ा भक्त है। हनुमान जी ने मंत्र भी दिया है अब भीषण जी को, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। वो हनुमान जी के शिष्य बन गए थे। हनुमान जी भगवान के इस स्वभाव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने साफ कह दिया कि उभय भांति तैयार न हो, दोनों तरह से लाओ। यदि कपटी होगा तो चिंता नहीं है, लक्ष्मण के हाथ में धनुष बाण है ना, और यदि शरण में आया होगा तब तो चिंता है ही नहीं, मैं प्राण की तरह रक्षा करूंगा उसकी। रखियों ताही प्राण की नाही, वाल्मीकि रामायण में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं एक बार भी कोई मेरी शरण में आकर के ये कह दे हे राम मैं आपका हूं, तो मैं उसे समस्त जीवों से अभय कर देता हूँ, सबसे अभय कर देता हूँ। अभयम सर्वदा तस्मिन्, अभयम सर्वभूते विदा में तो व्रतम, मैं अभय कर देता हूँ सबसे, जमराज से, काल से, उसे कोई भय नहीं होता। भगवान ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण समुद्र का जल लाओ, विभीषण जी से भगवान ने कहा यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं, हे मित्र मैं जानता हूँ तुम निष्प्रिय हो, कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है, फिर भी एक मनवंतर तक मैं तुमको राज दे रहा हूँ लंका का, और समुद्र का पानी मंगा करके भगवान ने अभिषेक किया, संकल्प किया, लंका का भी राज दे दिया। राम के वाणी में और राम में कोई अंतर नहीं, राज्याभिषेक हुआ उसी राज्य पर जिस पर लंकापति रावण था, इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जय संपति शिव राम नहीं दिन दिए दशमात, शिव शंकर ने जिस संपत्ति को रावण को दिया था दस मस्तक काट करके वो चढ़ाया था शिव जी को, रावण दस मस्तक काट करके हवन किया था और उससे पिघल करके भगवान शिव श्रीलंका का राज दिए थे, वही संपत्ति वही राज भगवान ने विभीषण को दे दिया केवल मस्तक झुकाने से। तो बहुत अंतर है देवताओं में और भगवान में, सकुच दिन रखना, वही संपत्ति भगवान ने दिया और संकोच से, संकोच मतलब उनको लज्जा रहे थे कि मैं क्या दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। पर शिव जी संपत्ति दिए दस मस्तक काट करके चढ़ाने पर, ये भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान में और देवताओं में बहुत अंतर है। बहुत अंतर। ये मूर्खता बस लोग ये कह देते हैं कोई भी देवता भगवान है, तो ये सब से ब्रह्मा जी लिखते हैं। ब्रह्मा जी इस लोक के और परलोक के अगले जन्म के सारे उपलब्धियों को भोगों को लिखते हैं, लेकिन वैष्णव का अपराध करने से ब्रह्मा जी का वाक भी नष्ट हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हंति श्रेयांशी सर्वाणी, सर्वाणी श्रेयांशी श्रेयानी, सारे मंगल नष्ट हो जाते हैं इस जीवन में और अगले जीवन में। वैष्णव का तिरस्कार, वैष्णव का अपमान, दुर्वचन बोलना, यह सब बहुत घातक है। इसलिए भगवान ने कहा है चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से, ताते वैष्णव अपराध उठे माती हाथी माता उपाड़े बा छिले तार सुखी जाए पाता। भक्ति एक लता की तरह है कि इसे सुरक्षित रखना चाहिए बाड़ बना करके, बाउंड्री बना करके रक्षा करनी चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माली बन करके इसको हृदय में रोपे और बाढ़ बना करके रखे। बाढ़ बनाना क्या है? नम्र होना, विनीत होना। त्रिनादपि सुनिश्चेना तरो रिव सहसुना अमानिना मान देना। तीन काम बताया भगवान, एक तिनके से भी अपने को तुच्छ समझना और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना और स्वयं मान न चाहना और दूसरों को मान देना। ऐसा करेगा व्यक्ति तो वो सफल होगा। कीर्तनी और सदा हरि, वो सदा हरि का कीर्तन कर सकता है। रास्ते में पड़े हुए किसी तिनका को व्यक्ति अपने पैर से रौंद देता है, थूक देता है, लेकिन वो तीर्ण कभी प्रतिवाद नहीं करता। तुम क्यों मुझ पर पैर रखा, क्यों मुझ पर थूका, वो नम्र रहता है। फिर भी वही रहता है। और वृक्ष वृक्ष है ये रूप जो उपजीव्य है मनुष्य के, कितना सहता है। सूख जाता है, मर जाता है, लेकिन किसी से पानी मांगने नहीं जाता। घाम सहता है, वर्षा सहता है, आंधी सहता है, जाड़ा सब कुछ सहता है, भगवान ने बताया कि वैष्णव का गुरु वृक्ष है। सब कुछ सहता है, कोई काट देता है वृक्ष को, तोड़ देता है टहनी, लेकिन कभी प्रतिकार नहीं करता है। वृक्ष को काटते हैं कुल्हाड़ी से लोग, लेकिन उसी वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं, वो कभी भगाया नहीं किसी को कि तुम हमें काट रहा था, तुम हमारी छाया में नहीं रह सकते। काटने वाले को भी छाया देता है, छाया ही नहीं फल देता है। इस तरह से सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष में फल आता है, हजारों पक्षी वानर और मनुष्य फल के लिए उस पर ढेला मारते हैं, उनको फल देता है। केवल फल लेते हैं, वृक्ष को कुछ देते नहीं है, लेकिन यही स्वभाव है वृक्ष का, देना जानता है, देगा, लेने का नामो निशान नहीं, लेता नहीं है कुछ भी, केवल देता है। और एक बात भगवान ने बताया, अमानिना मान देना, अमानिना कभी मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव और मान देना ही चाहिए, मान देने में वचन का बड़ा महत्व। यदि कोई किसी के यहाँ आया, किसी के आश्रम में या घर में, तो यह कहने में क्या हर्ज है, आइए बैठिए और थोड़ा सा जल पिलावे। थका मंदा व्यक्ति वो अपेक्षा करता है कि यहाँ हमको विश्राम के लिए स्थान मिलेगा। यदि संभव है तो उसको बैठने के लिए आसन देना चाहिए और मधुर वचन, आइए महाराज बैठिए और कुछ नहीं है घर में तो पानी तो है ना, पानी पीने के लिए देना चाहिए। इतनी अपेक्षा किसी पथिक को होती है, थका बांधा आता है, अतिथि है। तो हमारे घर को लूट नहीं ले जाएगा, अधिक से अधिक वो कुछ भोजन चाहता है तो ऐसे अतिथि को मीठा वचन देना और बैठने के लिए आसन देना, कुछ खाने के पानी देना, कम से कम इतना सम्मान करना ही चाहिए। क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है। यदि अतिथि का सत्कार नहीं होता है तो वह घर सियार के घर के समान कहा गया है। फिर राजगृह जिस घर में वैष्णव का ब्राह्मण का अतिथि का स्वागत नहीं होता है तो वह वास्तव में मनुष्य का आवास नहीं, सियार का आवास। घर में जितने लोग हैं सब सियार जैसे। इस तरह से भगवान के भजन की योग्यता आती है, कीर्तन करने की योग्यता आती है यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं। सारा संसार सम्मान चाहता है, सम्मान के लिए भूखा है, तो अपने पास जो भी सामर्थ्य है उसे सम्मान करना चाहिए। पानी देकर, आसन देकर, मधुर वचन देकर, मधुर वचन बोल करके सम्मान करना चाहिए। सम्मान पा करके व्यक्ति अनुकूल भावना करता है। और यदि आप कुछ शिक्षा देना चाहें तो शिक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन सम्मान दे करके। एक बार भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति आया, वो बहुत भूखा था, तो उसे बहुत से बहुत भिक्षु घेर लिए और धर्म की शिक्षा देने लगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा उस व्यक्ति से, तुमको कोई परेशानी है? तब तो उसने बहुत दीन स्वर में कहा, मुझे भूख लगे। तो भगवान ने कहा सब लोग धर्म उपदेश छोड़ो, पहले इसको भोजन कराओ। जब भोजन कराए तो वो प्रसन्न हो गया, सुनने लगा। तो सुन करके वह भी एक बहुत भिक्षुक हो गया, सन्यासी हो गया। ये सत्य घटना है। किसी को सम्मान देने से हमारा प्रचार सफल हो सकता है, तिरस्कार करने से नहीं। कभी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कई बातों को समझाने के लिए कह दिया है, अगर कोई साधु है, महात्मा है या कोई भी व्यक्ति, तो उससे कड़ा बोलेंगे तो नहीं सुन पाएगा। सम्मान देंगे उसका हृदय शीतल हो जाएगा, और शीतल हृदय में वो हमारे उपदेश को, शिक्षा को, टीचिंग को ग्रहण करेगा। इसलिए सम्मान देना और सम्मान प्राप्ति की इच्छा न होना ये योग्यता है। वचने किम दरिद्रता, वचन अच्छा बोलने में क्या दरिद्रता है, अच्छा वचन बोलने में क्या गरीबी है। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, खास करके ब्रजमंडल में चलने वाले भक्तों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग तीर्थों में मिलेंगे जो पैसे मांगते हैं, तो उनको श्रद्धा हो, शक्ति हो तो कुछ देना चाहिए। अगर नहीं है तो कम से कम कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। एक बार एक भक्त के साथ में गया था राधा कुंड, तो एक पंडा पीछे लग गए और लगे पैसा मांगने। तो भक्त उब करके कहा, तुम लोग क्या तीर्थ पुरोहित बने हो कि मनुष्य की आशा करते हैं। तब पंडा जी ने कहा, मनुष्य की आशा नहीं करते हैं, तुम दो या मत दो, क्या हम तुम्हारे भरोसे बैठे हैं या श्री जी के भरोसे बैठे हैं। राधा कुंड के जल को श्री जी कहते हैं, श्री जी के भरोसे बैठे हैं। तुम्हारे जैसे बहुत लोग आएंगे, आते हैं, लेकिन हमारा भरोसा राधा कुंड पर है। हम तो भक्त लज्जित हो गया और देने लगा 5 रुपये, लेकिन वो पंडा जी नहीं लिए कि नहीं, तुम्हारे जैसे अश्रद्धालु का तुम पैसा नहीं देंगे। इसी तरह से समस्त जगहों पर तीर्थ पुरोहित मिले हैं, गरीब बच्चे मिले हैं, तो उनको भले आप दें या ना दें वो आपकी सुविधा पर मिले, लेकिन कम से कम कठोर वचन न बोले। एक बार बम्बई में मैं जा रहा था, कार से एक भक्त ले जा रहा था, नामदेव चौक जुहू के पास पड़ता है, वहाँ शीशा खुला था, गाड़ी रुकी थी, एक व्यक्ति आ करके मांगने लगा, जो गाड़ी पर प्रधान थे उन्होंने कुछ कहना चालू किया। सिग्नल चालू हो गया, तुरंत गाड़ी चल दी। मैं कहा कि अच्छा हुआ आप कुछ बागवान नहीं छोड़ पाए, वचन का बाण चलाना नहीं पाए, फिर नहीं चला पाए। तो फिर कार में बैठे बैठे हमको कहने लगे, आपको मालूम नहीं है ये बहुत बड़े धनी होते हैं, भीख मांग करके बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, एक दो बार बोले थे गाड़ी खड़ी रहने पर, तुम लोग ये भीख क्यों मांग रहे हैं। उनके वचन बाण जैसे चलते थे, तो मैं रोका कि अब ज्यादा मत बोलिए। तब वो गाड़ी में बैठे बैठे फिर बोलने लगे, ये लोग बहुत धनी होते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। तो मैंने कह दिया सारा बॉम्बे का बिल्डिंग इन्हीं लोगों का है, मैं केवल एक रुपया दे दिया था, उसके चलते उनको उद्वेग हो रहा था और लगे शिक्षा दे रहे हैं, ये प्रभुपाद जी मना किए हैं नहीं देना चाहिए। मैं कह दिया कि प्रभुपाद का नाम बदनाम मत करो, तुम अपना नाम बनाओ। इस तरह से किसी भी मंगे को जो अभाव में है वचन मारना वचन का दुरुपयोग है। यदि आप कुछ दे नहीं पाए तो कम से कम हरे कृष्ण बोल दीजिए, राधे राधे कह करके सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। रोज तो द्वार द्वार पर घूमते ही हैं भीख मांगने के लिए, ये कह सकते हैं कि हम तो कृष्ण के लिए मांग रहे हैं, कृष्ण के लिए मांग रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन दूसरे लोग जो मांगते हैं देह के लिए या परिवार के लिए, फिर भी हमें उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं देना वो आपकी मर्जी, लेकिन कठोर वचन बोलना नहीं चाहिए। तो मधुर वचन बोलना और मान लायक कोई व्यक्ति नहीं, फिर भी सबको मान देना, ये हमारी भजन की योग्यता बढ़ाने के लिए भगवान शिक्षा दिए हैं। कीर्तनियों सजा है, कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए हमेशा। करने के लिए तृतीया में सब बताते हैं, मानना, मान देना, सही सुनना, त्रिनादति सुनि चलना, ये सब तृतीया में है। ऐसा हो करके तब कीर्तन हो सकता। सहन करते हुए कीर्तन करना चाहिए। अगर हम सहन नहीं करेंगे, बात बात में उद्विग्न हो जाएंगे, बहस करेंगे, तब कीर्तन कहाँ से होगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कंस एक बहुत बड़े कुल में जन्म लिया था, जादव कुल में, क्षत्रिय था। क्षत्रिय की प्रबल दंडों में, दंडों से ब्राह्मण और गौ की रक्षा होती है, लेकिन वह असुर था, असुर कांस था। इस कारण से जन्म से ही क्षत्रिय का काम न करके असुर का काम करता था, और असुरों के साथ मेल किया। माता दुर्गा की बात से उसको ज्ञान हो गया था, सद्बुद्धि आई थी, लेकिन आघ बक चारुण मुष्टिक आदि दैत्यों के संग में वो सलाह करने लगा, बातचीत कथा करने लगा। तो ये सब राय दिए कि ब्राह्मणों की, गऊ की, वैष्णवों की हत्या करनी चाहिए, इसी में आपका हित है। उनकी बात को सुन करके कंस फिर गया और ब्राह्मणों की हिंसा में ही अपना हित मानने लगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ इस श्लोक में, बहुत बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सावधान करने के लिए है, कभी किसी वैष्णव का अतिक्रम नहीं होना चाहिए, किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अन्यथा जीवन में जो लिखा है बहुत दिन तक जीने का, जी नहीं पाएंगे, ये तो कम बात हुई, जी नहीं पाएंगे और जस नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म का आचरण करके जो कुछ कमाए हैं स्वर्ग आदि, वो भी नष्ट हो जाएगा। वैष्णव का अपराध है, तत्काल नष्ट कर देता है। कहाँ तक गिना में आयु श्रेयम जसो धर्म लोका नाशिष्य होते हैं। यहाँ तक जो लोग कमाए हैं, जो निश्चित है कर्म के द्वारा कि मिलेगा, लेकिन वो सब नष्ट हो जाएगा, श्रेय नष्ट हो जाएगा। वैष्णव का अपराध करने पर केवल आयु ही समाप्त नहीं होती है, आयु तो समाप्त होती है, उसके साथ जस धर्म स्वर्गादि लोक सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए, किसी भक्त का कभी तिरस्कार न करें, कभी अपमान न करें। और जैसे अतिक्रम वैष्णव का अपमान करने से सब नष्ट हो जाता है, तो उसके विपरीत समझना चाहिए कि वैष्णव का सत्कार करने से सब कुछ फल देता है, अपना धर्म जो किए हैं वो फलीभूत होता है, परलोक में स्वर्ग आदि उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, जस बढ़ता है, सब कुछ मिल जाता है, केवल ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करने से। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।